इन तो हमें अपने मंगलमयी वाणी से हम सभी को प्रचार करने के लिए कृपा करें। इन तो हमें नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज,
परम पूज्य बुंदा श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य बुंदा श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय।
पिछले दिनों हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या कोई विचार की शक्ति हो सकती है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस बात पे विचार कर रहे हैं। विचार में भी बहुत सामर्थ्य है यदि वे विचार निरंतर हो तो। कोई भी चीज बार बार दोहराई जाती है तो वो अधिक पावरफुल हो जाती है, अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसके सैकड़ों उदाहरण अपने देखने में भी आते हैं। कोई व्यक्ति लगातार झूठ बोले तो वो झूठ भी सच जैसा मालूम पड़ने लगता है। वैसे नीति में लिखा हुआ है कि अगर 100 दफे एक झूठ बोला जाए तो 101वीं दफे वो सच की तरह और लोगों के जानने में आने लगता है। तो जब इस तरह बुरी बातें बार बार दोहराने से और भली जानने पड़ने लगती हैं तो क्यों हम भली बातों को क्यों ना दोहराएं, और भली बातों को दोहराने से वे तो और अधिक भली हो जाएंगी, वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। तो ऐसी ये विचार की शक्ति पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम लोग हमेशा कोई ना कोई विचार करते हैं लेकिन हमारे विचार विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं तो उनका कोई जो असर है वो उतना हमारे जीवन में नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये प्रक्रिया शुरू की कि हम एक निरंतर एक विचार करेंगे संसार की वास्तविकता का विचार। अब संसार की वास्तविकता कितने तरह से हो सकती है तो 12 तरह से संसार की वास्तविकता का विचार करें। संसार में जो दिखाई पड़ता है वो सब क्षणभंगुर है। संसार में मैं जहां अपने लिए सुरक्षा खोजता हूं वहां मैं अपने को असुरक्षित पाता हूं, जहां मैं शरण खोजता हूं वहां मुझे वास्तव में शरण नहीं मिलती है। संसार ऐसा है लेकिन इस संसार में भी कोई शरण है जिसे मैं भूला हूं? संसार में भी ऐसा कुछ है जो कि शाश्वत है, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। मैं अभी तक संसार की वास्तविकता को नहीं पहचानने की वजह से कभी कभी और जानते हुए भी और जो चीजें क्षणभंगुर हैं उनमें भी शाश्वत मान करके बैठ जाता हूं और जहां शरण नहीं है वहां भी शरण मान करके और बैठ जाता हूं। इस संसार की क्या तासीर है ये जानते हुए भी मैं और उसका ठीक ठीक सदुपयोग नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपने विचार को निरंतरता देकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। सुकुमार मुनि महाराज जी बन गए थे, लेकिन जब तक वो अपने घर में रहे, तब देखें अपन उनके जीवन के बारे में कि अगर बहुत सारे डनलप के गद्दों के नीचे एक सरसों का दाना भी हो तो वो भी उनको चुभ जाता था। बताइए, माने उनकी अपनी शरीर की सुकुमालता, उनके अपने शरीर की कोमलता कितनी अधिक थी। वे कभी भी सूर्य के प्रकाश में बाहर नहीं निकले। ये बात जुदी है कि उनकी माँ का ऐसा सोचना था कि वे अगर किसी मुनि महाराज के संपर्क में आ जाएंगे तो मुनि बन जाएंगे। ऐसा किसी मुनि महाराज जी ने ही कह दिया था कि जैसे ही इनके पिता का मुंह ये देखेंगे या किसी मुनि महाराज के दर्शन करेंगे तो ये घर छोड़ देंगे। पिता तो घर छोड़ के जा ही चुके थे और बेटे से भी माँ को ऐसा लगता था कि ये भी चला जाएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिता बेटे का मुंह देखते ही साथ वैराग को प्राप्त हो गए थे। ये इस तरह की बहुत लंबी एक घटना है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, पर अपन देखें कि वे ही सुकुमार जो सरसों के दाने जिनको चुभते थे, जिनको कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा, इसलिए आर्डनरी जो दीपक है वो भी उनको चुभता था, रत्न दीप हुआ करते थे। आज भी ऐसे रत्न हैं जिनमें से रोशनी निकलती है, उनके द्वारा जो है उस प्रकाश में वे पाले गए थे। और इतना ही नहीं, कमल के पत्र में और उनके चावल पकाए जाते थे तो बड़े मुलायम होते थे, वे ही खा सकते थे और कोई चावल वे नहीं खा सकते। बताइए, इतना कोमल जिनका अपना शरीर था। असल में शरीर कोमल और कठोर नहीं होता, मेरे ख्याल से मन में जैसी संकल्प की शक्ति होती है वैसा ही हमारा शरीर हमारे साथ व्यवहार करने लगता है। हम उसे जैसा बना लेवे वैसा बन जाता है। हमारा अपना बहुत सुख सुविधा में पला हुआ बेटा जरा सा धूप में निकल जाए तो लू लग जाती है। पत्थर तोड़ने वाली माँ का बेटा तो वहीं धूप में ही खेलता रहता, उसको लू नहीं लगती। जबकि उसको हो सकता है कि हमारे जैसे कोई भी सुख सुविधा के साधन नहीं है, इसके बावजूद भी उसने अपने शरीर को वैसा बना लिया। हम सब के भीतर भी सामर्थ्य होते हुए भी हम वैसा नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक ही, हमारी अपनी संकल्प या हमारी अपनी विचार की शक्ति। वो जहाँ कमजोर होती है वैसे ही हमारा सब कुछ पूरा जीवन ही हमें और बहुत अशक्त मालूम पड़ने लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। और वे ही सुकुमार राजा जब उनसे मिलने आए थे तो उनके आंख में आंसू आते देख करके कहा था कि लगता है बीमार सीमार है आपका लड़का, और जब खा रहा था तो ऐसे चावल चुन चुन के खा रहा था, क्या भूख उग नहीं रहती इसको? के तब मालूम पड़ा था कि ये इतना डेलिकेट है, इतना अधिक सुकुमार है। और वे ही सुकुमार एक दिन रात 4 बजे अपने ही समीप के उद्यान में आए हुए मुनि बने अपने ही प्रता की वाणी सुन करके, जब वे वैराग भावना पढ़ रहे थे वहां रात्रि के अंतिम प्रहर में सामायिक के उपरांत, तब वो ध्वनि उनके कानों में आ जाती है। बस इतना ही पर्याप्त था, उस तलघर के भीतर भी, उस महल के भीतर भी उनकी संकल्प शक्ति जागृत हो जाती, उनकी विचार की सामर्थ्य जागृत हो जाती, और अपनी ही रानियों के रस्सी के अभाव में और उनकी साड़ियों को बांध करके सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं, उतरने में फिसलते हैं, जगह जगह उनके पैर छिल जाते हैं, रास्ते से चले जाते हैं तो खून बहता चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी अब शरीर की कोई परवाह नहीं है। वही शरीर जो कल तक जो है बहुत मुश्किल में डालता था, आज वही शरीर रक्त रंजित होने के बाद भी तपस्या के लिए तैयार है। और मुनि महाराज उनको विचार करके अवधि ज्ञान से जानकर कह देते हैं कि 3 दिन की आयु विशेष है, कल्याण कर लो। महाव्रत धारण करके 3 दिन के लिए और खड़े हो जाते हैं, और उन्हीं समयों में और एक स्यालनी जुग बच्चा युत अपने दोनों बच्चों के साथ, एक स्यालनी जो इनके अपने पूर्व जीवन की भावज रही थीं, वे ही उनके रक्त को सूंघ करके जो कि पैरों से बह के गिरा था वहाँ आकर के इनके पैर से भक्षण करना शुरू करती हैं, यहाँ हृदय देश तक भक्षण करती चली जाती 3 दिन और रात तक। लेकिन इसके बाद भी वह जो उनकी विचार की सामर्थ्य है वो उनको अटिग रखती है, मुझे ये उदाहरण आपसे इसलिए सुनाना पड़ा कि हमारे भीतर भी ऐसी ही सामर्थ्य है। जब वे इतने सुकमाल होने के बाद भी अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए और इतना अधिक शरीर के प्रति निष्प्रह हो सकते हैं, तो हमारी अपनी शरीर के प्रति आसक्ति इतनी अधिक क्यों है कि हम अपना अहित जानते हुए भी और उससे बच नहीं पाते? इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। हमारी अपनी आसक्ति, हमारा अपना संसार है। संसार और किसी चीज का नाम नहीं है, हमारी अपनी आसक्ति का नाम संसार है। हम यहां अगर इस संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे के दुख भोग रहे हैं तो हमारी अपनी आसक्ति है और कोई वजह नहीं। चारों गतियां मुझे दुख देती हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके, ऐसा कहीं नहीं लिखा। चारों गतियों में मैं अपनी अज्ञानता, मैं अपनी आसक्ति, मैं अपने मोह, मैं अपनी इंडल्जेंस, जो शब्द कहना हो वो कह लीजिएगा, उसकी वजह से यहां पर दुख पाता। ये है संसार की वास्तविकता का बोध। जिस दिन ये बहुत भीतर से ये मालूम पड़ने लगे, अभी तो ऐसा लगता है कि मेरे अगर एक बढ़िया सा मकान होगा ना तो सुख ही सुख है, मेरे ये जो चीज है ना ये चीज की कमी है इसलिए दुख है, जिस दिन ये चीज हो जाएगी उस दिन मेरे सुख ही सुख बरसेगा, अभी तो ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरी दुखों की वजह भी इस संसार में कहीं बाहर है, वो मेरे सुख की वजह भी कहीं बाहर है। लेकिन जिस दिन ये बोध हो जावे कि मेरे लिए यहाँ अगर दुख मिला है तो उसकी वजह मेरी आसक्ति है, और मेरे लिए अगर सुख मिल सकता है तो मेरी अपनी अनाशक्ति से मिल सकता है, मैं संसार में इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाऊं कि दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्था। दोनों में आसक्ति है, ध्यान रखना। उधर एक ढेला नहीं है फिर भी आसक्ति खाए जाती है, और इधर बहुत होने के बाद भी आसक्ति बहुत है इसलिए वो बहुत सारा भी कम मालूम पड़ता है। मोर एंड मोर संसार पूरा इस पे टिका हुआ है। और नाउ एंड हियर नहीं, फ्यूचर एंड देयर, अभी और यहां नहीं, कहीं और कभी सुख मिलेगा, कहीं और मिलेगा। जहां मैं हूं इस घर में तो मुझे कोई सुख नहीं मिलता, कहीं और है सुख तो, और जो जो चीजें मेरे पास हैं उनमें सुख नहीं है, अभी सुख नहीं, कभी और मुझे सुख मिलेगा, मैं उस भविष्य में सुख मानता हूं, और जहां हूं वहां से कहीं और सुख मानता हूं, इसी में मैं अपने संसार को बढ़ाता हूं। ये बोध मेरे भीतर होना, क्या ऐसा बोध अपने भीतर हम जागृत कर सकते हैं? कर सकते हैं, अपने विचार की शक्ति से। ये जो मैंने आपको उधार विचार दिए हैं, मेरे पास भी थे उधार, कहीं किसी के अपने विचार नहीं है, मौलिक मौलिक विचार तो तीर्थंकर देते हैं, और उन विचारों को हम मौलिक बना सकते हैं अगर अपने जीवन में उनको उतार लें तो वे हमारे हो जाते हैं। अब इन विचारों को जो हमने यहाँ पर आपस में बैठ करके और जाना है, अगर इनको आप निरंतरता देंगे तो जीवन में आसक्ति कम होने में देर नहीं लगेगी। ये हमारी आसक्ति तो है ही, बताइए आप नहीं है क्या? एक बिल्ली गई थी विदेश यात्रा पर, मैंने आपको सुनाया था क्या? है यार, अरे तब तो आपको जरूर जानना चाहिए। जब मैंने जाना तो मैं बहुत हंसा, लेकिन वो हंसना अपने ऊपर हंसने जैसा है। बिल्ली पर हंसी तो आएगी, लेकिन अपने ऊपर भी अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो अपने ऊपर भी हंसी आएगी। वो विदेश यात्रा पे गई थी बिल्ली, तो अपनी सब सहेलियों से कह के गई थी वो कि हम विदेश यात्रा पर, तो उन्होंने कहा था कि सुनो जब विदेश यात्रा पे जा रहे हो तो सुना है वहाँ पर जो रानी साहबा हैं उनके बहुत सुंदर मुकुट है और उस मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, और तुम जब विदेश जा रही हो तो जरूर देख करके आना, और भी बढ़िया बढ़िया वहाँ पर चीजें हैं। उसने कहा सब देखी। गई वो बिल्ली अपने सेठ जी के साथ गई थी, हाँ, तो जाकर के जो है उसने बैठी रहती थी, वो चुपचाप सेठ जी के साथ घूमती थी, और सारा उसने घूमा जितना सेठ जी ने घूमा, सब देखा उसने, वापस लौटी। तो नेचुरली है कि कोई विदेश से लौटे तो सम्मान ज्यादा ही मिलता है, तो सारी सहेलियों ने उसका बहुत फंक्शन वंक्शन करा और सब। ये व्यंग है बहुत बड़ा, ध्यान रखना, हाँ, इसमें कहानी में तो सबने बहुत सम्मान करा। जब तक देश में थे तब तक कोई इज्जत नहीं, मेरी सारी आशक्ति कहीं और सुख मिल सकता है इसमें है, मेरे अपने जीवन में मैं जहां हूं वहां सुख तो मुझे नजर ही नहीं आता, कहीं और है सुख, विदेश से लौट के आने वाला मुझे ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता, सुखी दिखाई पड़ता। वो लौट के आई, सबने खेल लिया, रिसेप्शन वगैरह दिया उसको, बुफे नहीं दिया होगा उसने, बुफे सिस्टम से वो लोग थोड़ी जानते हैं वो कहाँ पैर खड़े होंगे, वो उन्होंने वैसे ही दे दिया, कर लिया होगा जो भी किया हो, पर उन्होंने बढ़िया रिसेप्शन दिया। और उसमें फिर उसके बाद अब बारी आई संस्मरण सुनाने की। हाँ, संस्मरण तो सुनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा, इतने विदेश से रिटर्न, फॉरेन रिटर्न, तो फॉरेन रिटर्न है तो संस्मरण सुनाओ, तो उसने संस्मरण सुनाए, तो लोग पूछते जा रहे थे, बिल्लियां पूछ रही थी कि फिर ये भी देखा, उन्होंने सब देखा। उसने कहा लेकिन सुनो एक बहुत बड़ी बात बताऊं, और बाकी सब तो ठीक है, रानी साहबा सुंदर थी, उनके मुकुट सुंदर था, कहले लेकिन सुनो वहां पर चूहे बहुत मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे बिल्ली को और बाकी दिखेगा ही नहीं, बिल्ली को चूहा दिखेगा बस। हमारे लिए भी यहाँ संसार की, अब बिल्ली पे हंसी आ रही कि नहीं आ रही कि बुद्धू इतने बड़े विदेश गई और चूहे ही देखना थे तो काय को बेकार में वहां गई। ऐसे ही हम लोगों के अंदर जैसी आसक्ति है संसार में वैसा ही दिखाई पड़ता है, हम इसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पाते हैं, जो संसार की वास्तविकता है वो नहीं दिखाई पड़ती हमारी अपनी आसक्ति की वजह से। एक कबाड़ी अगर किसी झील के किनारे पहुंचे तो उसमें उसे क्या दिखाई पड़ेगा भैया, उसमें उससे मालूम पड़ेगा कि जो लोगों ने जूते चप्पल फेंके हैं टूटे, कनस्तर पड़ा हुआ है और भी बहुत सामग्री पड़ी है, अगर इसको निकलवा दिया जाए तो बड़े अच्छे दामों में बिकेगी, कबाड़ी को तो वही नजर आएगा। अगर हमारी आंख भी इस संसार में कबाड़ी की तरह है तो हमें इस संसार में कुछ भी सार नजर नहीं आ सकता, और जो जो असार है वही सारभूत नजर आए, जिसकी कोई कीमत नहीं है उस कबाड़ी की दुकान पर उसी की कीमत है, जिसको कि हमने फेंक दिया, जो हमारे लिए असार है, जिसको ज्ञानी जन असार मानते हैं, उसमें यदि हमें सार नजर आता है तो अपनी अज्ञानता पर हमें रोना आना चाहिए। हम बिल्ली के अज्ञान पर हंसते हैं पर हमें अपने अज्ञान पर भी रोना चाहिए। इस संसार में भी कुछ सारभूत है, संसार में सब कुछ असार नहीं है, संसार में जो कुछ असार है वो तो है ही, क्योंकि जन्म मरण और बुढ़ापा असार है यहाँ पर, लेकिन इस जन्म मरण और बुढ़ापे से पार होने का जो मोक्ष मार्ग है वो असार नहीं है। संसार में आशक्ति असार है, संसार से अनाशक्त होना यही सारभूत है इस संसार में, क्या हम इस चीज का भान नहीं कर सकते हैं? हमें इस चीज का निरंतर विचार करना। देखिए एकदम सहसा नहीं होता कोई भी चीज, आज हमने विचार शुरू किया है, इस विचार को वर्षों करना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीजें अपने आप आसार मालूम पड़ने लगेंगी। अभी जिनमें हमें, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, अरे इसको फेंको मत, ये देखो कितनी बढ़िया चीज है, ये काम आएगी, हम अभी चीजों को इस तरह उपयोगी और काम की मान करके जोड़ के रखते हैं। जिस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये चीजें हमारे काम की नहीं है, उस दिन क्यों हम घर में रखेंगे बताइए। हमें ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे लोग हैं वो घर में गंदगी फैलाते हैं, अरे क्या जोड़ के रखा है तुमने, ये कागज वागज के रंग बिरंगे से टुकड़े इनमें क्या धरा हुआ है, ये जो तुम पत्थर चमकदार और ये थोड़ी सी सीपीप और शंख वंख जोड़ करके लाए, अरे इनमें क्या धरा है, कचरा फैला रहे हो, चलो फेंको बाहर, ऐसा हम अपने बच्चों से कह सकते हैं। लेकिन किसी दिन वे बच्चे अगर होशियार होके कहें कि क्या ये कागज के टुकड़े जिनको सौ सौ के नोट मानते हो तिजोरी में धरे हैं जोड़ के, और ये पत्थर मेरे पत्थर थोड़े कम चमकीले हैं, तुम्हारे हीरे जवाहरात ज्यादा चमकीले हैं, पर हैं तो वे भी पत्थर। हमें अभी दोनों में अंतर नजर आता है ना, वो जो चमकदार हैं जिनकी हमने कीमत करी है वे हमें कीमती मालूम पड़ते, कीमत हमने डाली है हीरे में जवाहरात में, नहीं तो कंकर पत्थर की तरह बाहर पड़े हुए थे, हमने हैं उनको कीमती मान करके तिजोरी में धर लिया है, वरना तो वो
कहीं कोई उसमें कीमत नहीं थी। हो सकता है किसी दिन हम बाहर जो यहाँ कंकर पड़े हैं उनको कीमती मानने लगे, तो कहो इनको भी लोग झाड़ पहुँच करके और ले जाएं, और जैसे बच्चे लोग उठा के जेब में धरते हैं कि बड़ा अच्छा सुंदर सा दिख रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी दृष्टि ही ऐसी हो गई है, संसार की वास्तविकता का बोध होना ही संसार भावना है और कुछ नहीं। संसार के बारे में बहुत बहुत अच्छे से विचार करना, किसी भी जैन मंदिर में आप जाएंगे और एक चित्र बना मिल जाएगा, संसार दर्शन। हाँ, सब धर्मों में अपने अपने तरह से संसार का दर्शन तो करवाया गया, संसार की वास्तविकता का। लेकिन मजा यह है कि जिसमें रहने लगो उसकी वास्तविकता नहीं नजर आती, उससे जरा दूर खड़े हो जाओ फिर देखो उसको गौर से। अगर आपको घर गृहस्थी के संबंध देखना है, उनकी वास्तविकता देखनी, तो जरा दूर खड़े होकर देखो। मैंने बहुत गौर से दूर खड़े होकर देखा, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। मैंने वो स्थिति देखी है लोगों की इस संसार में, गृहस्थी तो नहीं करी लेकिन बहुत गौर से देखा है। कैसे देखा है, एक दिन जिसको ये कह के लाते हैं कि तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा, उसी से एक दिन ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं काट सकूंगा। यह है संसार की वास्तविकता, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। यह मैंने बहुत गौर से अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। जिस एक दिन हम जिसको ये कह के लाए थे कि तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, उसी व्यक्ति से ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ एक क्षण काटना मुश्किल है। इससे ज्यादा संसार की वास्तविकता और हो क्या सकती है। इसके बाद भी हमारा मोह, इसके बाद भी हमारी आसक्ति, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही बिस्तरा भूया बांध करके घर से बाहर आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि संसार की वास्तविकता को जान करके संसार में जीने की कला सीख लें। बस राजा जनक का उदाहरण बहुत पुराना हो गया, सिर्फ अकेला उदाहरण देने से कोई काम नहीं चलेगा कि राजा जनक घर में भी ऐसे रहते थे, वो महापुरुष थे। क्या हम नहीं रह सकते वैसे, सिर्फ हम उनके उदाहरण दोहराते रहेंगे क्या? नहीं, हम भी अपने घर गृहस्थी में रह करके उससे अनाशक्त रह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारा अपना ही कहना चाहिए, हमारी अपनी ही कमजोरी है, इसको अपना दुर्भाग्य भी नहीं, हम पहले कहना चाह रहे थे कि हमारा दुर्भाग्य, हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं, हमारी अपनी कमजोरी, हमारी अपनी आसक्ति हमें घेरे रहती है। संसार दर्शन कितनी बार हमें इस बात को दिखा चुका है कि वन मोर ड्रॉप, एक बूंद और बस, जबकि वो व्यक्ति हाथी उसके पीछे दौड़ रहे थे, उनसे बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गया था, और पेड़ पे चढ़ने के बाद भी वो लटका हुआ था उस पेड़ पर, और दो चूहे, वो सब प्रतीकात्मक है, दो चूहे जिस डाल को वो पकड़े था उसको काट रहे थे, और वृक्ष को वो हाथी आकर के जड़ों से उखाड़ने की कोशिश में था, और नीचे जो है अगर वो गिरेगा तो एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें कि चार सर्प मुंह बाए खड़े थे, पांच मान लो, छह मान लो, जितने मानना उतने मान लो, वो सब प्रतीकात्मक हैं। और एक देव विमान ऊपर से आता है और वो कहता है कि तुम इतनी विपत्ति में आ जाओ मेरे विमान में, वो कहता ठहरो थोड़ा, क्यों ऐसी क्या बात है, इतनी विपत्ति के बाद भी ठहरने की क्या बात है, कोई भी होगा इतनी विपत्ति में ठहरा रह सकता है क्या, और मदद मिलने के बाद भी मदद ना चाहे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर आसक्ति है तो सारी विपत्तियों के बाद आसक्ति है। काहे की आसक्ति, हुआ क्या था, इतने लटकने और इतनी विपत्ति के बाद भी एक मधुमक्खी का छत्ता और उसमें से एक एक बूंद शहद टपक रहा था जो उसके मुंह में ऑटोमेटिकली आ रहा था, और वो जो बूंद जब आती थी बहुत देर देर में आती थी, लेकिन वो देखता रहता कि अब सुख मिला। बस वो कहता था वन ड्रॉप मोर, बस एक और फिर चलता हूं, बस थोड़ा, जस्ट वेट, रुको। वो देव से कह रहा था कि रुको, ऐसे ही शायद हम तो नहीं कर रहे हैं कि जस्ट वेट, बस अब भी बस थोड़ा और, ये बेटा थोड़ा समझदार हो जाए, बस इसकी शादी वादी कर दें फिर तो निश्चिंत, उसके बाद तो बस महाराज थोड़ा और अटको है काम और फिर तो तैयार। खड़ा कबीरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जोकर भूखे आपने चलो हमारे साथ। बहुत कठिन है, इस संसार के बीच रह करके भी संसार से अनाशक्त होना। घर फूंकने का मतलब ये नहीं है कि घर में आग लगा दो, घर फूंकने का मतलब है कि भीतर के राग द्वेष को खत्म कर दिया जिसने कि घर बना रखा था। घर तो ईंट और चूने का बनता है बाहर, जिसको छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन एक घर जो हम अपने राग द्वेष और अपनी आसक्ति का अपने भीतर बना लेते हैं, वो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ जाता है और वही हमें वापस संसार में लाता है, और कोई वजह नहीं है। संसार किसी ईश्वर ने बनाया हो वो ईश्वर जाने, हमें कोई आवश्यकता नहीं उस ईश्वर की। लेकिन वो जो संसार हमने अपना स्वयं बना रखा है उसके ईश्वर हम हैं। हमें नहीं विचार करना है कि इस संसार को किसी ईश्वर ने बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन वो जो संसार हमने अपना बसा रखा है क्या उसके बारे में हमें विचार नहीं करना चाहिए? इस पे तो हम बहुत बड़ी विचार करते हैं। हम हो सकता है कि इस सृष्टि के बारे में एक संगोष्ठी आयोजित कर ले और जिस पे हम रिसर्च पेपर्स मंगवाएं कि इस सृष्टि को किसने बनाया और कैसे ये बनी है, और हाइपोथेसिस कितनी सारी साइंस में है कि सृष्टि की रचना कैसी हुई और एज ऑफ अर्थ क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, इस पे तो बहुत सारे। लेकिन मैंने अपना जो संसार बसा रखा है इस पे कभी कोई रिसर्च पेपर लिखा? हमने कभी कोई इस पे विचार किया है? ये हमें विचार करना चाहिए। और संसार में दुख है, किसी के कहने से मान नहीं लेना, अपने अनुभव से जानने की कोशिश करें ना कि इस संसार में सुख है कि दुख है। जहां जहां हाथ लगाया वहां जरा सा तो सुख मिला, लेकिन इसके बाद अल्टीमेटली दुख ही मिला। ठीक ऐसे ही जैसे कि तलवार पर अगर मीठी चीज लगी हो और उसको चाटो तो मीठी चीज मीठापन तो देती है, लेकिन उसके साथ ही जीभ कटती भी चली जाती है। संसार के सारे सुखों की तासीर ऐसी ही है। और इस बात का डिक्लेरेशन इतने बड़े शब्दों में कर दिया कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, हम और आपकी तो छोड़ो, उनके पास तो क्या था, ये कहो कि क्या नहीं था। हमारे पास तो बहुत सारी चीजों का अभाव है और हम उन्हीं अभावों की पूर्ति में लगे हैं, उनको कौन सा अभाव था? उनको तो सारी चीजों का सद्भाव था, एंटरटेन करते वो आराम से, इतने अम्यूजमेंट के साधन थे, इतने मनोरंजन के साधन थे उनके पास में, पूरा वैशाली महावीर स्वामी थे तो राजा थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती होकर के जन्मे थे शांतिनाथ भगवान और कुंतीनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान, छह खंडों के अधिपति थे, कौन सी चीज का अभाव था? अगर सुख था उस संसार में तो छोड़ने की आवश्यकता। मैं तो सोचता हूं कि जब शायद हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तब आचार्यों को ये लिखना पड़ा कि अब तो समझ जाओ कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर काहे को त्यागते, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भैया इससे अधिक और संसार की वास्तविकता के बारे में क्या विचार किया? ये विचार हमारे मन में बार बार आना चाहिए। पहली चीज कि मैंने इस संसार में सुख पाने की जो चेष्टा की है, क्या सचमुच मुझे इस संसार में सुख मिला है, या कि मुझे बार बार सुख के साथ दुख का ही अनुभव हुआ है? इस संसार में मैंने जिस चीज को सारभूत मान के रखा है क्या वो सचमुच सारभूत है? और मैंने इस संसार में जिस चीज को असार माना है, ऐसा तो नहीं मुझे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए अपने उस डिसीजन को, अपने उस निर्णय को एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। साइकोलॉजी में इसको विमर्श कहते हैं। विभिन्न संदर्भों में हम विचार करके देखें अपने जीवन को अगर परिवर्तित करना है। साइकोलॉजिस्ट तो यही कहते हैं कि अगर अपने जीवन को अपने परिवर्तन करना है तो अपने विचारों को परिवर्तित करें। हम पता नहीं किस रेफरेंस में और कौन सा निर्णय लेके बैठ जाते हैं। हमारे माता पिता ने हमें बचपन से जिन चीज़ों में सार दिखाया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों में सार हो ही। हमारे माता पिता को उन चीज़ों में सार मालूम पड़ा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस चीज़ में सार है, तुम इसको अपने पास रखो, इससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि इन चीज़ों से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमें तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई सुख नजर आ रहा है। हमें इस तरह से विचार करना है अपने आप स्वयं, मेरे कहने से नहीं, मैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। इन दिशाओं में हम बैठ के, खाली समय में बैठ के, और उस पर विचार करें और देखें कि क्या वास्तव में जैसा जैसा हमने संसार के बारे में अपना विचार बना रखा है क्या ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने विचार को बदलें और जो सही विचार है उस पर निरंतर देखें कि हाँ ठीक कहा गया है, मेरी अपनी आसक्ति है, मेरा अपना मोह है, जिसकी वजह से इस संसार को मैं ठीक ठीक नहीं देख पाता हूँ। और जैसे ही मेरा जितना जितना मोह घटता जाएगा, जितनी जितनी आसक्ति घटती जाएगी, उतना ही संसार की वास्तविकता, और फिर मज़ा आएगा देखना आप, फिर चीज़ों का उपयोग करेंगे हम सच में। जितनी आसक्ति उतना कम उपयोग चीज़ों का, ध्यान रखना ये, और थोड़ा सा समझ लें अपन संसार में। संसार में जितनी आसक्ति है उतने ही कम उपयोग कर पाएंगे आप। अगर हमें नए कपड़े लेके आए हैं उनमें कितनी आसक्ति रहती, हमारे नए कपड़ा खराब न हो जाए, अब किसी विशेष अवसर पे पहनेंगे, अबे तो धरे रहो सेंत के, अब जब वो फंक्शन आएगा तब उस पर सुनते हैं कि महाराज के सानिध्य में एक प्रोग्राम होने वाला, उसमें निकालेंगे, उस दिन पहनेंगे। देखिएगा जिस चीज़ में जितनी, अरे और तो छोड़ो, अगर खाने पीने की चीज़ में आपको पता नहीं आसक्ति है कि नहीं, अपन को जब हुआ करती थी तब की बात कह रहे हैं, आपको भी हुआ करती होगी, जिसको मान लो अच्छा लगता है रसगुल्ला, और अगर वो परोसा जाए थाली में तो बताओ अच्छा उसको आप पहले खाते के धीरे से धर ली, बाकी सब खा के फिर बाद में खा, नहीं आप दूर वो आप अपने स्वयं जीवन में जिस चीज के प्रति जितनी आसक्ति होती उसको बचा करके रखते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उपयोग वे ही ठीक ठीक कर पाते हैं जो अनाशक्त होते हैं। हम लोग आशक्तिवश चीजों का सदुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि चीजें हमें भोगती हैं, हम चीजों को नहीं भोगते हैं, और सोचते हैं कि हम भोगता हैं, हम स्वामी हैं, हम करता हैं, जबकि हम चीजों के गुलाम हैं। अपने पैसे को हम खर्च नहीं सकते हैं, ये इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती, अपनी चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, इससे बड़ी चीजों की गुलामी क्या हो सकती। लेकिन मालकियत नजर आती है कि मैं इन सब चीजों का मालिक हूं, नहीं हम इन चीजों के उपयोग नहीं कर पाने से, इनको दे नहीं पाने से इनके गुलाम ही हैं। भैया संसार में ऐसी गुलामी कब से कर रहे हैं, अनादि काल से कर रहे हैं। जरा सा विचार कर दिए कि क्या सचमुच में मैं संसार में मैं मालिक बन के रह रहा हूं या कि गुलाम बन के जी रहा हूं। मैं इन पांचों इंद्रियों का गुलाम ही तो हूं, मैं अपने मन की गुलामी ही तो कर रहा हूं, मैं कहां स्वतंत्र हूं। ये संसार मुझे गुलामी सिखाता है, नहीं मेरी अपनी आसक्ति से मैं यहां पर पराधीन बनकर के जीवन जी रहा हूं, मैं स्वाधीन बनकर स्वतंत्र होकर के भी अपना जीवन जी सकता हूं। ऐसा अगर हम इस संसार अनुपेक्षा के बारे में विचार करें तो कोई वजह नहीं है कि हम संसार से पार हो जाएं। मेरे ख्याल से तो इस संसार से पार होने के लिए और हमें यही प्रयास करना चाहिए कि इसकी वास्तविकता को हम समझें। राजा जनक का उदाहरण, भरत चक्रवी कर्पर्ति का उदाहरण इस संसार के बारे में, और सबसे बड़ा एक उदाहरण जो आज के अवसर पर जबकि हम संसार के बारे में सोच रहे हैं, एक उदाहरण मुझे ध्यान आ गया कि ऐसे अनाशक्त भी हुआ जा सकता है। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 20-25 साल पुरानी घटना है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पुराणों में लिखी हुई घटनाओं पे हमें सहसा विश्वास नहीं होता, पर जीवन में घटित होती हुई घटनाओं पर तो हमें और विचार आना ही चाहिए। एक माँ के दो बेटे थे, दोनों 20-30 साल के हो गए, जुड़वा हुए थे, और एक दिन ऐसा आया कि वे दोनों नहाने नदी में गए और पता नहीं क्या हुआ, और नदी के तेज बहाव में दोनों बह करके बहुत दूर चले गए और डूब करके मरण को प्राप्त हुए। देखना दो बेटे जिसके हैं और कोई नहीं है, और वे दोनों भी, और दोनों की लाश गांव वाले ला करके सौंपते हैं। दिन का समय है, माँ रोटी बना रही है, 10 बजे हैं और दोनों लाशें घर में आई हैं। क्या करें माँ, दहाड़ मार करके चीख मार करके उसी रोटी के स्थान पर बेहोश हो जाए। बेहोश हो जाए तो सांसारिक जीवन ही कहलाएगा, क्योंकि संसार में इतना तो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो इस संसार में रह करके भी संसार से अलिप्त रहते हैं, और जब उसे ये मालूम पड़ता है कि दोनों बेटे नहीं रहे, दोनों की लाश आई है ढकी हुई, सुनो यहां मत रखो, सामने मत रखो। अभी रोटी बनानी है, खाने के लिए आने वाले हैं, देखेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। सुनो, बाजू के कमरे में रख लें। इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी अनाशक्ति। हां, अपने जीवन में ऐसा हो सकता है घटित, और इतने अनाशक्त लोग भी आज जीते हैं। मैं आपको कोई फर्जी घटना नहीं सुना रहा। दोनों को रख दो बाजू के कमरे में। रोटी फिर भी बनती जा रही है, अब रोटी में आंसू का खारापन भी मिल रहा है, ये बात जरूरी है। आंसू भी गिरते जा रहे हैं, पर रोटी ज्यों की त्यों बन गई है। और 5 ही मिनट हुए हैं, सबको गए, दरवाजा वहां बंद करके लाश रख दी गई है, और आते दिखाई पड़ गए हैं उसके अपने जीवन साथी। जैसे ही आते हैं, जल्दी से हाथ मुंह धो करके आ जाओ, रोटी बन के तैयार हो गई। अरे आज क्यों जल्दी कर रही हो, अच्छे से नहीं, जल्दी ही आ जाओ, तुमसे एक बात पूछनी है। अरे तो पूछ लो ना भाई। नहीं, खाना खाते समय पूछूं, पहले आओ तो। अच्छा आता हूँ, जल्दी से नहा धो करके बैठ गए हैं खाना खाने। सुनो, एक बात ये पूछनी है कि वो हम तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं करते। हाँ ठीक तो है, तो बताओ दो। तो वो बाजू वाले अपनी वो मांग रहे थे, सीढ़ी ली थी ना अपन ने उनकी नसैनी, वो मांगने आए थे, तो हमने कहा तुमसे पूछ के दे दें। अरे इसमें क्या पूछना था, अपनी थोड़ी थी, उनकी नसैनी थी, वो मांगने आए थे तो मेरे से बिना पूछे दे दी थी, तुम उसमें क्या बात थी। हाँ बस यही तो मुझे तुमसे पूछना था। अब हाथ धो लो, हो गया भोजन? हाँ हो गया, भोजन तो हो गया। हाथ धो लो तो सीढ़ी दे दें उनको, उनकी। हाँ भाई, उनकी सीढ़ी है तो उनकी देना ही पड़ेगी। ध्यान रखना अपनी बात को, विचलित नहीं होना। क्यों, इसमें विचलित होने की क्या बात है? उन्होंने सीढ़ी हमें कुछ समय के लिए दी थी ना। हाँ कुछ ही समय के लिए तो दी थी, हमारा काम हो गया, उन्होंने वापस मांग ली है तो दे दो। यहां आओ मेरे साथ, ये दरवाजा खोलो। खोलते हैं तो 2 लाशें, ये किसकी हैं? भगवान ने हमें 20 साल के लिए सौंपे थे, आज वे कहते हैं कि हम वापस ले लेंगे, तो हमने तुमसे बिना पूछे और उनसे कह दिया कि ले लो, अब तुम विचलित मत होना। हमें इनको 20 साल के लिए पालने पोसने को दिया था, हमने 20 साल तक पाला पोसा, आज जो है खबर आ गई सो हमने लौटा दिया। बहुत कठिन है इतना अनाशक्त होना। अभी तो अचेतन वस्तुओं के इधर उधर हो जाने से सांस थम जाती है, अभी तो चेतन वस्तुओं की बात ही छोड़ो। अभी कितनी गहरी आशक्ति है और हम इस संसार में बचना चाहते हैं, बहुत कठिन है। थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, और थोड़ी क्या, बहुत साधना, कई जन्मों साधना करना पड़ती इसलिए इस अनाशक्ति की साधना। और बाकी सब बातें तो धीरे धीरे, ये सब जो अपन ने विस्तार किया है ना, वो सब उसी का है। और करेंगे अपन, और बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन आज देखो क्या समझ लिया अपन ने, कितनी बड़ी चीज समझ ली अपन ने। ऐसी है हमारी आशक्ति, इसके चलते हम यहां दुख पाते हैं, फिर भी नहीं बच पाते उस दुख से। और वे इतने अनाशक्त हैं, इसलिए उन्हें कोई दुख नहीं घेरता। वे स्वीकार कर लेते हैं, जो जैसा घटित होता है इस संसार में वैसा स्वीकार कर ले। बहुत कठिन पर सीखेंगे। इस विचार को बनाए रखिएगा, इस विचार को निरंतरता दीजिएगा, शायद हो सकता है कि जीवन के अंत तक, ना सही इस जीवन में, अगले जीवन में ये बात याद आ जाए, तो किसी भी तरह से इस संसार के दुखों से हम बच करके अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुखदर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
अत
जित्वा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता वो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अभिनश्वर मणिया ये शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पद पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तमना स्वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो स्वेखो मानु शिव कानी है अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरे आनी है रावणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन धवल मंगल गान रवा कुले दिन ग्रहे मुनि राज चरणों में ओम परम पूज्य स्वामी महाराज के बावन श्री चरणों में अनल रूप प्राप्त है अंगम रूपा में भी